आमुक कई वर्षों तक फारसी और हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हुए प्रतीत हुआ कि फारसी तथा हिंदी के सूफी काव्य परस्पर पर्याप्त संबद्ध हैं, अतः उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो अधिक उपादेय होगा। इसी भावना को लेकर श्रद्धेय आचार्य प्रवर डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी से विचार विमर्श हुआ। उन्होंने भी इस विषय को अछूता और शोध के लिए उपयोगी बताया तथा अपने निदर्शन में ही हिंदी और फारसी सूफी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर शोध कार्य करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की तथा समय समय पर इसकी पांडुलिपि का समुचित परीक्षण करके उपयोगी परामर्श दिए, जिससे यह कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सका। इसके लिए मैं उनके प्रति विनम्र भाव से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस प्रबंध की समग्र सामग्री को 8 अध्यायों में बांटा गया है। प्रथम अध्याय में भूमिका के रूप में फारसी सूफी काव्य के विकास पर प्रकाश डाला गया है। इसके अनंतर द्वितीय अध्याय में हिंदी सूफी काव्य की प्रगति की विवेचना की गई है। तृतीय अध्याय में हिंदी और फारसी सूफी काव्य में परम तत्व की धारणा का तुलनात्मक निरूपण किया गया है। चतुर्थ अध्याय काव्य में प्रयुक्त रहस्यात्मक प्रतीकों से संबंध रखता है। पंचम अध्याय में दोनों परंपराओं में व्यवहित कथानक रूढ़ियों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। षष्ठ अध्याय का विषय भाषा, छंद, अलंकृति, शैली आदि काव्य रूपों का तुलनात्मक अध्ययन है। सप्तम अध्याय में काव्यगत रूढ़ियों का तुलनात्मक विवेचन है और अष्टम अध्याय उपर्युक्त अध्यायों में उपलब्ध परिणामों की परिगणना के रूप में है। इस प्रकार 8 अध्यायों में इन दोनों भाषाओं के सूफी काव्य की परंपराओं का तुलनात्मक अध्ययन आ जाता है। इससे पूर्व फारसी सूफी काव्य और हिंदी सूफी काव्य पर पृथक पृथक रूप से तो कुछ लिखा गया था, परंतु अभी तक इन दोनों का विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन नहीं हुआ था। यह भी स्पष्ट नहीं था कि हिंदी सूफी काव्य फारसी सूफी काव्य से कितना प्रभावित हुआ है। इसी अभाव की पूर्ति के लिए यह विनम्र प्रयास है। इसके अतिरिक्त इस प्रबंध में प्रयुक्त हिजरी सन के विषय में स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है। प्रायः फारसी काव्य की चर्चा हिजरी सन के अनुसार की जाती है, इसलिए इस अध्ययन में भी हिजरी सन का उल्लेख आ गया है। यथासंभव हिजरी सन के साथ साथ सरलता के लिए ईसवी सन का भी निर्देश किया गया है, किंतु कहीं कहीं केवल हिजरी सन ही प्रयुक्त किया गया है। हिजरी सन को ईसवी सन में परिवर्तित करने के लिए जिस विशेष पद्धति को अपनाया गया है वह इस प्रकार है। इसके प्रयोग से शेष हिजरी सन ईसवी सन में बदले जा सकते हैं। हिजरी सन को 33 से भाग देने पर जो भजनफल प्राप्त होता है उसे भाज्य में से घटाकर शेष में 622 जोड़ने से ईसवी सन बन जाता है, यथा 33 भागे 440, 13 33, 110 99 11, 44 माइनस 13 बराबर 427, 427 प्लस 622 बराबर 1049। अतः सन 440 हिजरी बराबर सन 1049 ईस्वी। 33 से भाग देने पर जहां शेष 33 के आधे से अधिक अर्थात 17 से 32 तक आता है, वहां भजन फल में 1 जोड़ा जाता है। उदाहरणार्थ 33 भागे 525, 15 33, 195 165, 30, 15 प्लस 1 बराबर 16, 525 माइनस 16 बराबर 509, 509 प्लस 622 बराबर 1131। अतः सन 525 हिजरी बराबर सन 1131 ईस्वी। यद्यपि अध्ययन में प्रस्तुत सभी परिणामों के लिए मूल ग्रंथों का पारायण किया गया है, तथापि जिन पूर्ववर्ती विद्वानों ने इस विषय में कुछ भी कार्य किया है उनसे भी यथास्थान लाभ उठाया गया है। उन सभी विद्वानों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करना परम कर्तव्य हो जाता है। जिनसे कहीं कहीं मत की समानता नहीं हो पाई है उनके प्रति भी श्रद्धा भाव तो यथावत है ही। मैं नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी तथा उसके प्रधानमंत्री श्री सुधाकर पांडे जी के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता हूँ, जिन्होंने उत्साहपूर्वक इस शोध प्रबंध को प्रकाशित करके हिंदी साहित्य जगत को अपूर्व विषय का विस्तृत ग्रंथ भेंट किया है। प्रस्तुत प्रबंध का समुचित मूल्यांकन तो विद्वत समाज ही करेगा, यदि इससे उनका कुछ भी परितोष हुआ तो मैं अपने श्रम को सार्थक समझूंगा। आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ने प्रयोग विज्ञानम। विनम्र S.N. बत्रा, श्रीनिवास बत्रा।